हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये लगातार अमरेंद्र जी को रोशनी देता रहा और अपनी शक्तियों के द्वारा 4 दिनों तक उन्हें बिल्कुल ठीक और सही सलामत रखा। 4 दिनों के बाद जिन्नंज की शक्तियाँ जैसे ही जागृत होंगी, उसके बाद हम उसके द्वारा पिताजी यानी अमरेंद्र जी को ठीक कर सकेंगे। तारा परी की बात सुनने के बाद करिश्मा जी एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तारा बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में वाकई में एक परी, मेरा मसीहा, मेरा फरिश्ता बनकर आई हो। थैंक यू सो मच, ऐसा कहकर करिश्मा जी ने तारा का धन्यवाद किया। तभी तारा परी ने करिश्मा जी से कहा, आपको इस तरह से मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है करिश्मा मॉम। और शायद आप भूल रही हैं, अमरेंद्र जी मेरे पिता जैसे हैं, तो भला मैं उनकी मदद क्यों नहीं करती। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, करिश्मा जी की आंखें एक बार फिर छलक आईं। उन्होंने आगे बढ़कर तारा परी को गले से लगा लिया। तभी अमन वहाँ एक बार फिर आ गया, क्योंकि तारा परी ने ये सब काम करने में कम से कम आधे घंटे का समय लिया था। वही अमन जो तराना के साथ अपने कमरे में था और इसीलिए तराना को जादुई शॉल में लपेट रखा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, इसलिए वो वापस से एक बार फिर उस कमरे में आ गया। और जैसे ही उसने यहाँ वहाँ देखा कि अब उसके पिताजी के शरीर से वो सफ़ेद धुआं काफ़ी कम निकल रहा है, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से करिश्मा जी से कहा, मॉम ये क्या हुआ, पिताजी के शरीर से धुआं निकलना अचानक से कम कैसे हो गया, आखिरकार ये चमत्कार आपने किया कैसे। तभी करिश्मा जी मन ही मन में तारा परी को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए कहने लगीं, वो बेटा इधर दादा महाराज जी ने भले ही मना कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की और तब उन्होंने मुझे एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जिसकी बदौलत मैं कम से कम 4 दिनों तक अमरेंद्र जी को जीवित रख सकती हूँ। लेकिन 4 दिनों के बाद अगर जल्दी उन्हें जिन नंज द्वारा उनकी शक्तियाँ वापस नहीं दिलाई गईं, तब उनकी जान जा सकती है। अब जैसे ही अमन ने ये सुना, उसने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मॉम कि अपने पिताजी को बचाने के लिए आपने खास तरह की शक्ति का प्रयोग किया। अब आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारे जिन्नंज हमारे पिताजी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगे। ऐसा कहकर अमन मुस्कुराता हुआ अपने पिताजी के पास जा बैठा। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के महागुरु को तप में बैठे हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो राक्षस की माँ से बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि राक्षस की माँ इस दुनिया में थी ही नहीं। राक्षस की माँ तारा परी के वंशज को ख़त्म करने के बाद सीधा वहाँ से दानवलोक में चली गई थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद उनका बेटा तारा को लेकर वहाँ आ ही जाएगा, तो इसीलिए वो सीधा पहले ही दानवलोक में चली गई थीं, जिसकी वजह से वो काली शक्तियों का महागुरु उन तक नहीं पहुँच पा रहा था और दानव की दुनिया में जाकर उनका हर तरह का तप, हर तरह का जादू विफल हो रहा था। और धीरे धीरे अब 3 दिन और बीत चुके थे और अब जिन्नातों का वो दिन आने वाला था, केवल उसमें 24 घंटे बाकी थे। 24 घंटे के अंदर अंदर जिन्नातों के वंशज की शक्तियाँ उसे मिलने वाली थीं। सभी जिन्नातों में एक तरह का धूमधाम से उस दिन को मनाया जाने वाला था। इतना ही नहीं, सभी जिन्नातों ने पूरी की पूरी जिन्नातों की दुनिया को दुल्हन की तरह सजा दिया था। उनके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बेसब्री से उसी दिन का इंतज़ार था कि कब जिन्नंज अपनी सारी शक्तियों के द्वारा उनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। और अब ऐसा ही होने वाला था। जिन्नंज के अंदर शक्ति आने के बाद ऑटोमेटिक जितने भी जिन्नात थे उन सबको भी कुछ विशेष तरह की शक्तियाँ मिलने वाली थीं, तो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं राक्षस की माँ जो कि दानव लोक में थी, उसने सोचा कि उसे एक बार पृथ्वी लोक की ओर जाना चाहिए और वहां जाकर उसे ये देखना चाहिए कि तारा परी की शक्ल अब कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तारा के चेहरे पर दुख देखना चाहती थी, तो इसीलिए वो अपने कुछ कड़े मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी लोक पर जाने लगी। और अभी वो पृथ्वी लोक पर पहुंची भी नहीं थी, जैसे ही वो दानव लोक यानी सरहद से बाहर निकली, तभी उसे काली शक्तियों के महागुरु का आभास हो गया कि काली शक्तियों का महागुरु उससे बात करना चाहता है। तब राक्षस की माँ को हैरानी तो हुई, लेकिन अगले ही पल उसने बादलों के बीच में ही अपनी आंखें बंद करके काली शक्तियों के महागुरु से बात करना शुरू कर दिया। तब हुई बातों में काली शक्तियों के महागुरु ने उसे बता दिया था कि आपने कुछ दिन पहले जो जिन्नंज का वध किया था, असल में उस जिन्नंज को कुछ भी नहीं हुआ था, वो परी की तरह से ठीक और स्वस्थ है। अब जैसे ही ये राक्षस की माँ ने सुना, उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ गया। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि परलोक में पड़े मूर्छित अवस्था में पड़े हुए अपने बेटे को इस बात के बारे में बता सके कि जिन्नंज जिंदा है। वहीं राक्षस तो सिर्फ और सिर्फ किसी गलत फहमी में था कि जिन्नंज की मौत हो चुकी है। वेल, रानी माँ राक्षस की माँ को तारा अमन के बंगले के बाहर देख चुकी थी, क्योंकि रानी माँ ने अपनी कुछ दासियों को उस वक्त पृथ्वी पर भेज रखा था जो कि अमन के बंगले की चारों तरफ निगरानी कर रहे थे और जो तराना और परिवार वालों की खबर उन्हें दे रहे थे। इस तरह से बड़ी ही आसानी से 4-5 दिन गुजर गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। लेकिन अब आखिरी दिन तारा परी पर काफी ज्यादा बड़ा खतरा मंडराने लगा था। वेल, अब रानी माँ ने जल्दी ही तारा परी को इस बात के बारे में बता दिया था कि तराना पर इस वक्त काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। राक्षस की माँ खुद उसका वध करने के लिए वहां आई है। अभी तो तारा परी के परी तारा के ताप से वो बच गई है, लेकिन शायद अगली बार ऐसा ना हो पाए, इस तारा परी को सचेत रहना होगा। जैसे ही तारा परी ने ये सब सुना, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। 4-5 दिन उसके बड़े ही आसानी से गुजर गए थे और उसने इस बीच अमन के साथ ढेर सारा प्यार किया, साथ ही साथ अपनी बेटी के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। लेकिन उसने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरी कुछ घंटे इतने ज्यादा हानिकारक होने वाले होंगे। तभी तारा ने जादू शॉल में अच्छे से अपनी बेटी को लपेट लिया और सीधा करिश्मा जी के पास आई और कहने लगी, करिश्मा मॉम, कितना समय लगेगा? हमें लगता है कि हमें तराना के अंदर शक्तियों की विधि शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर तराना के अंदर शक्तियां होंगी तो कोई भी काली शक्ति उसे किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही तारा परी ने ये कहा, करिश्मा जी उसकी ओर देखकर कहने लगी, बेटे, उसके अंदर शक्तियां जागृत करने की सबसे जल्दी अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हमें है, क्योंकि जब तक कि जिन्नंज के अंदर शक्तियां नहीं आएंगी तब तक वो अमरेंद्र जी को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो इस वक्त अमरेंद्र जी का ठीक होना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तभी करिश्मा जी ने तारा से कहा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा, अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर हम तराना को जिन्नातों की दुनिया में ले जाएंगे। तब तक तुम एक काम करो, तराना बेटी के नहाने की तैयारी करो, और जिस तरह से तुमने उस दिन इसको दूध से नहलाया था, आज तुम दूध की जगह इसको फूलों से निकले हुए रस से नहलाओगी। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, तारा हैरान थी और कहने लगी, लेकिन फूलों का रस वो कहाँ से आएगा? तभी करिश्मा मन ही मन मुस्कुराई और हल्के से कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते करिश्मा जी ने बड़े ही खूबसूरत फूलों के रस वहाँ पर उपस्थित कर दिए थे।
अब जैसे ही तारा परी ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उन फूलों के रस के अंदर से बड़ी ही सुगंधित सी खुशबू आ रही थी। तब तारा परी देरी ना करते हुए जल्दी ही उन फूलों के रस को वहां लेकर चली गई और उसने जल्दी ही अपनी बेटी को नहलाना शुरू कर दिया। वहीं वो राक्षस की माँ ताक में थी कि कब तारा परी जादुई शॉल से अपनी बेटी को निकाले, क्योंकि भले ही वो परी तारा के ताप से वहां से गायब हो गई थी, लेकिन वो गायब होकर कहीं नहीं गई थी। उस वक्त वो अमन के बंगले के दूसरे छोर पर चली गई थी, और जैसे ही तराना परी को जादुई शॉल से आज़ाद किया गया वो तुरंत वहां पहुंच चुकी थी, और उसे घूरने के बाद जैसे ही उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तारा परी ने तुरंत राक्षस की माँ के गर्दन को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, भले ही आप किसी को भी दिखाई ना दे, लेकिन आप मेरी नज़रों से नहीं छुप सकती हैं। मैं आपकी जान नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मजबूरन मुझे आपका वध करना होगा। अपनी फालतू की बकवास बंद करो, तुम जरूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रही हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? उस जिन अंश को मौत मेरे शस्त्र ने अपने हाथों से दी है, तो आप इस तरह से मुझे मेरे राह से नहीं भटका सकती हो। तभी काली शक्तियों का महागुरु जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, तो अब एक काम कीजिए, अपनी आँखें बंद कीजिए। अब जैसे ही राक्षस की माँ ने आँखें बंद की, तभी काली शक्तियों के महागुरु ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई आईना उनकी आँखों के ठीक सामने कर दिया, और फिर देखते ही देखते जादुई आईने में राक्षस की माँ को करिश्मा जी की गोद में तराना दिखाई देने लगी थी, और वो बड़े ही ध्यान से तराना को देख रही थी और साथ साथ उसकी आंखें आग बरसा रही थी। उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर तराना की मौत देखना चाहती थी, क्योंकि जब तक जिन अंश जिंदा रहेगा उनके बेटे पर जान का खतरा बना रहेगा। वो तो बेफिक्र होकर पाताल लोक में चली गई थी, इनफैक्ट वो दानवों की दुनिया में चली गई थी, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से जिन अंश जिंदा होकर उसके शस्त्र को धोखा दे देगा। तो उस वक्त उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। तभी उनकी आंखों की तप से वो जादुई आईना दो टुकड़ों में बट चुका था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। तब काली शक्तियों के महागुरु कहने लगे, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आया, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। केवल कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो जिन अंश इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे मार पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, और उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? ऐसा कहकर काली शक्तियों का महागुरु राक्षस की माँ को जिन अंश को मारने के लिए व्यतीत व्याकुल वसूल करने लगा था। तभी उस राक्षस की माँ ने अपने कुछ कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और अपने उस शस्त्र को एक बार फिर आने पर मजबूर कर दिया, जिस शस्त्र ने जिन अंश का वध किया था। अब जैसे ही वो शस्त्र आया और उसने उस शस्त्र का गला पकड़कर जोरों से दबाना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से जिन अंश अभी तक जिंदा है और इसकी सज़ा हम तुम्हें ज़रूर देकर रहेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने ही बनाए हुए शस्त्र को गला दबाकर उसकी जान ले ली थी और वो शस्त्र जल्दी ही एक छोटे से बादल के रूप में बदलकर गायब हो चुका था। उसके बाद उसका मन पूरी तरह से बेचैन हो उठा था और उसने सोच लिया था, भले ही उसके पास कुछ घंटे बाकी हों, लेकिन वो कुछ घंटों के अंदर अंदर जिन अंश का अंत करके रहेगी और इस बार वो किसी शस्त्र को नहीं भेजेगी, बल्कि जिन अंश का अंत करने के लिए वो इस बार खुद ही जाएगी। तो कहीं न कहीं यही सब सोचते हुए अब उस राक्षस की माँ वहाँ से गायब हो चुकी थी और सीधा अमन के बंगले के बाहर पहुँच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर परीतारा करिश्मा और अमरेंद्र जी की रक्षा कर रहा था और उन्हें जीवित रखने के लिए परीतारा ने अपनी जान झोंक दी थी और वो लगातार अपनी शक्तियों के द्वारा अमरेंद्र जी को जिंदा रखे हुए था। अब जैसे ही उस राक्षस की माँ आई, परीतारा पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर उस राक्षस ने तराना का अंत कर दिया तो तारापरी भी अपनी जान दे देगी। और वो जो परीतारा था वो तारापरी के अंश से ही बना था, वो तारापरी का ही एक अंश था जो उसके किसी हिस्से से बना था। तो इसीलिए परीतारा अमरेंद्र जी की सुरक्षा छोड़कर सीधा उस राक्षस की माँ के पास चला गया और वहाँ जाकर उसने उसे अपने तप से उलझना शुरू कर दिया था। हालांकि उस राक्षस की माँ के अंदर काफी सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन उस वक्त परीतारा का ताप काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली उसकी ओर देर तक टिक नहीं पा रही थी।